सारे जो जन्म मरण हो रहे हैं, वासनाएं हो रही हैं, भला बुरा दिख रहा है, पुण्य और पाप में बंध है, वो सब बुद्धि का दोष है। प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम। मन समाधि में हो, चाहे विक्षेप में हो, चाहे मूढ़ता में हो, चाहे एकाग्रता में हो, उससे भी परे जो नित्य मुक्त है, उसमें जो जग गए, उनको बाह्य परिस्थितियां प्रभावित नहीं करती। ऐसा रहना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, सब तभी ज्ञानी हुआ। इसका ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। परमात्मा प्राप्ति अज्ञान मिटाती है, आपके और ईश्वर के बीच में जो दूरी है वो मिटाती है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, जो सर्वत्र समान रूप से प्रेमते प्रगट हो ही में जाना, उसकी प्राप्ति की तत्परता हो जाए, प्रीति हो जाए, वो ईश्वर तत्व प्रगट हो जाता है। फिर पता चलेगा कि दुख कल्पना के सिवाय नहीं है, सुख भी संसारी कल्पित है। नित्य आनंद स्वरूप परमात्म सत्ता, पृथ्वी अमृतमय, जल अमृतमय, तेज अमृतमय, वायु अमृतमय, आकाश अमृतमय, जीवन अमृतमय, परिस्थितियां अमृतमय, विक्षेप अमृतमय, मृत्यु अमृतमय, सब अमृतमय ईश्वर की लीला है। इस प्रकार अपनी अमरता का और ईश्वर की अमृतमय लीला का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। फिर कभी ये नहीं होता है कि ये शरीर का नाम बना रहे, ये मिले तो मैं सुखी, ये नहीं मिले तो मैं दुखी, नहीं, सब गुजर रहा है। तो जिनको जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करनी हो, दिन में 5 बार, सब बीत रहा है, सब गुजर रहा है, सुख दुख की लहरियां हैं, लेकिन उसको जानने वाला नित्य परमात्मा मेरा आत्मा है, ओम प्रभु ओम शांति ओम, फिर मन इधर उधर जाए, ओम शांति ओम आनंद। जो नित्य है वो नित्य है, और जो अनित्य है उसमें लीला होती रहती है। लीलाधारी नित्य है, लीला अनित्य है। ओम शांति। बीत रहा है, स्वतः गुजर रहा, बचपन बीत गई, रखी रखने से रही नहीं, जवानी बीत गई, किशोर अवस्था बीत गई, कल बीत गया, आज सुबह बीत गया, ये सब बीतने वाला है। इसको जानने वाला नित्य है और मेरा अपना आपा है, किससे धोखा करूं, नश्वर चीजों के लिए किससे द्वेष करूं, किससे राग करूं, किसको बुरा मानूं, किससे आसक्ति करूं। ओम आनंद। उसका व्यवहार समता का हो जाएगा, उसके जीवन में उदारता आ जाएगी, समता आ जाएगी। ऐसे नहीं पराए पैसों से उदारता करता रहे, नहीं, व्यवहार में उदारता, गांठ नहीं बांधेगा, कोई संकीर्णता नहीं रहेगी, समता, प्रसन्नता, नम्रता आ जाएगी, उदारता आ जाएगी। ये 4 सद्गुण स्वाभाविक सिद्ध हो जाएंगे और मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। मान अपमान की तो बात ही कहां, मौत का भी भय नहीं, पद चला जाने का भय नहीं। वो जो शाश्वत पद है वो तो नित्य है, और अनित्य पद तो किसी के रहे नहीं। कितने भी राजे महाराजे पद संभालते संभालते आखिर मर गए, प्रेत हो गए, लेकिन पद सदा नहीं रहा। अटल पद आत्मा है, परमेश्वर है, और वो नित्य हमारा अपना आपा है, हमसे दूर नहीं। ओम ओम परमात्मा ने नमः जप बढ़ा दे, मौन बढ़ा दे, विचार बढ़ा दे, निष्काम सेवा बढ़ा दे, फालतू समय न गंवाए। जो व्यर्थ का समय गंवाते हैं वे अपने आप के दुश्मन हो जाते हैं। या तो भगवत चिंतन, भगवत शांति, भगवत विचार, भगवत ध्यान, या तो भगवत प्रीति अर्थ सेवा सुमरण। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलम् अस्थिरम् ततस्ततो नियमेव आत्मन्येव वशम् नेत्। जहाँ जहाँ मन ये जाए चंचल अस्थिर, वहाँ वहाँ से बुला लाकर उसी सिद्धांत में लगाए, उसी परमेश्वर में लगाए। गाय अंबार रही है, उसकी गहराई में कौन? पक्षी की लोल कर रहे, उनकी गहराई में कौन? गंगा बह रही, कल कल चल चल तो ध्वनि उस ब्रह्म की। इधर तो अच्छा नहीं है, इधर तो शोर होता है, मैं एकांत में जाऊंगा, एकांत में फिर गुफा में सुविधा नहीं है तो मैं शोर भीड़ में जाऊंगा, भीड़ में सुविधा है तो एकांत नहीं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन खोज ही लेता है फरियाद, और फिर भागता फिरता है। जब तक गुरु आज्ञा मानकर, शास्त्र आज्ञा मानकर, डट कर एक जगह पर सेवा में सुमरण में लगा नहीं रहे तो तितली की नाई कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, मन भटकता रहेगा। इसलिए गुरु की आज्ञा से हमको, अब गुरु जी को ख्याल रहता था, वही शास्त्र हम पढ़ते। मनमाने किताब पढ़ने लग जाएगा तो बुद्धि ऐसी हो जाएगी, जहाँ जाना है उधर का ही साहित्य, हमें तो ईश्वर स्वरूप में जाना है तो वही साहित्य, वही सत्संग, वही कैसे दूसरे साहित्य, दूसरे संस्कार तो भ्रमित कर देंगे। कई वाद है, कई सिद्धांत है, कई कहानियां है। कहानियां मनुष्यों को प्यारी लगती, अच्छा है, कहानियां में प्रियता है। और वो कहानियां अगर जनक जैसों की है, याज्ञवल्क्य जैसी है, तो वो कहानियां या घटनाएं तो सत्य मिलाने में सहायता करती, लेकिन वैसे भी कहानियां सुनने में मजा आता है। राम जी को भी बड़ा रस होता है, रामायण में वर्णन आता है, भगवान रामचंद्र जी कथाओं के कथा प्रिय थे, भोजन आदि करते और फिर तुरंत सत्संग कथा में। तो विश्वामित्र जी भी पौराणिक कथाएं और घटाएं और वार्ताएं कहते, और साधु संतों से भी राम जी कथाएं सुनते। तो जगे हुए ऋषियों के द्वारा जो कथाएं सुनते तो आदमी आत्मा में जग जाता है, लेकिन कथा सुनने में मनुष्य की रुचि रहती। इसीलिए नावलों का प्रचार चला, हल्की फुल्की कहानियां, नावल, ऐसे ऐसे आलतू फालतू किस्से कहानियों के भी साहित्य खूब चल पड़ा। आदमी को कथा, कहानियां, किस्से सुनने का, बोलने का, पढ़ने का शौक ये बताता है कि ये नावल क्यों बने और क्यों चलते। लेकिन उनकी जगह पर अगर भगवत तत्व के किस्से होते, कहानियां होती, फलाने को भगवत प्राप्ति हुई, ऐसी ऐसी चर्चा हुई, फलाने गुरु शिष्य की ऐसी चर्चा हुई, फलाने ऋषि का भगवान की प्राप्ति का ये मार्ग रहा, इस प्रकार की घटनाएं, कथाएं, पौराणिक हो चाहे वर्तमान के युग की हो, वो जीव को कल्याणकारी कर दे। ये पिक्चर इधर उधर के देखेंगे तो विकार पैदा करने वाले पिक्चर, सिनेमाएं देखने से विकार पैदा होते, लेकिन परमात्मा प्राप्ति वाली को पिक्चरें तो कौन उतारेगा? जिसको परमात्मा प्राप्ति हुई है उसकी पिक्चर कौन उतार सकता? और चश्मदीद गवाह की कीमत होती है, सुने हुए से भी देखा हुआ विशेष प्रमाणभूत माना जाता है। तो जिन महापुरुषों को देखा है, जिनके जीवन में परिवर्तन देखा है, साधकों के, जिनके सत्संग में, साधना में ईश्वरत्व का अंश देखा है, तो उनके संपर्क में दूसरे लोगों को खूब लाभ होता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, कथा कीर्तन रात दिन जिनका उद्यमे, कह कबीर वादास की हम चरणन की के। कबीरा मांगे मांगना आदि आदि, प्रभु दीजो मह दोय संत समागम हरि कथा मोह घर निश दिन हो तो हरि कथा है कहानियां है संत समागम फालतू कथाएं क्यों सुने फालतू कहानियां क्यों सुने तो फालतू जीवन हो जाएगा व्यर्थ जीवन हो जाएगा इससे कहानियां बात भी वही सुनो जिसमें भगवत प्रीति पैदा हो भगवत ज्ञान पैदा हो भगवत निमित्त सेवा में उत्साह होता हो भगवत संबंधी मन बनता हो भाव बनता तो कल्याण होने में देर नहीं इधर उधर का देखोगे तो इधर उधर तो जन्मों से है और फिर अभी भी इधर उधर करे तो आजकल तो कंप्यूटर आ गए तो ना समझ छोरे बेचारे कंप्यूटर में ही फिल्म देखने लग जाते तबाही होती उनकी लेकिन सभी का जो अंतरात्मा होकर बैठा है उससे कुछ छुपा नहीं तुम कितना भी छुप कर कुछ करो लेकिन अपने आप से छुपा सकते क्या तो जो महापुरुष अपने आप में पहुंचे उनके लिए फिर ये आसान हो जाता नारायण 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 कलावती ने अपने पति दशरथ को कहा कि आपने मंगनी की पहले मंगनी के आसपास के दिनों में उल्टा स्त्रियों के साथ संपर्क किया है भले ही गला होती वे शादी के कुछ दिन पहले वैश्याओं के साथ आपने रातें बिताई है दारू पी हुई वैश्याएं और आपने भी दारू पी गला होती कैसे पता चला कलावती ने कहा नाथ जो भी आप कर्म करते तो उस परमेश्वर से साक्षी से तो नहीं छुप सकता है उसी में मैं गुरु का मंत्र जपते थे मैं साथ ध्यान करते तो मेरे को पता चला अब तुम दीक्षा लो पहले के काले कर्म कट जाए तुम्हारी ओरा सात्विक हो तुम्हारे शरीर के परमाणु सात्विक हो तब हमारा गृहस्थी गाढ़ा चलेगा नहीं तो अमावस्या और पूनम एक साथ नहीं होती ऐसा हो जाएगा फिर गर्गाचार्य से दीक्षा दिलाई कलावती ने राजा दशहर को पति को और करोड़ों करोड़ों काले कौवे निकल रहे शरीर से काले कौवे बना आभा के कण जैसे एक घूंट पे एक घूंट पानी पीते तो लाखों बैक्टीरिया तो फिर शरीर से करोड़ों करोड़ों में परमाणु नीच परमाणु काला काली आभा निकलती गई और जब से सफेद ऊंचा आभा ओरा बनती गई बाद में दोनों संवादिता में आ गए फिर राजपाट किया और देखा कि ये सुख भोग जिस शरीर से क्या वो भी तो मरने वाला है तो क्या सुख टिका समय ही तो बर्बाद हुआ रथ में बैठे राजा थी राज सुन लिया सोने के बर्तनों में भोजन कर लिया आखिर समय ही तो गया जिस शरीर को भोग भोगाया मजा लिया नाक को सुगंधी दिलाई जीभ को चस्के दिलाए शरीर को स्पर्श का सुख दिलाए इंद्रियों का ये तो इंद्रियां तो विकारों में गिराने वाली है लेकिन इंद्रियों के आधार ईश्वर में तो नहीं गए फिर राजपाट का त्याग करके एकांत में चले गए और उस श्रोत्र नेत्र जीवा के अधिष्ठान परमेश्वर को जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं आती है और जाती और चौथी तुर्य अवस्था तो तीनों अवस्थाओं का जो आधार है जागृत में स्वप्न नहीं है जागृत होता है तब स्वप्न नहीं होता लेकिन वो परमेश्वर के साथ परमात्मा तो जागृत में भी है अभी स्वप्न में भी उसी के सत्ता है गहरी नींद में भी उसी की सत्ता और ये तीनों बदलती है फिर भी जो नहीं बदलता है उस अबदल ईश्वर में टिकने के लिए एकांत में चले गए गुरु के चरण में ऐसे ही कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी राम जी को कहती है कि अब हमें वन भेजो बोले हम आपको वन कैसे भेजेंगे माँ अब तो तुम्हारी जरूरत है कौशल्या जी कहते राम तुम हमारे पुत्र राम हो राजा राम हो भगवान राम हो तुम मुंह की बातें क्यों करते हो जीव को अपना आत्म उद्धार करना चाहिए आत्म कल्याण करना चाहिए बाल्यकाल में जीव समझता है मुझे खिलौनों की जरूरत है इसकी जरूरत है उसकी जरूरत जवानी में समझता के सर्टिफिकेट की जरूरत है धंधे की जरूरत है नौकरी की जरूरत है बलानी की बच्चों के लिए जरूरत है और बाद में मूर्ख समझता के मेरी परिवार को मेरी जरूरत है इसलिए पड़ा रहता गलता रहता नई जीवात्मा की मुख्य जरूरत है कि मनुष्य जीवन में अपने परमात्मा स्वभाव को जान ले। अनित्य शरीर का फायदा यह है कि नित्य परमेश्वर जो बस रहा है उसको पाले, उसको जान ले, उसमें अपनी स्थिति कर ले। तो राम जी गदगद हो गया, कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को रथ में बिठाकर विदाई दी। श्रृंगी आश्रम में राम जैसे बेटे हैं और अयोध्या की राजमाता पद है, महल है, इतनी सुविधा है, उसको भी लात मार के चले गई भगवत प्राप्ति के लिए राम की मां कौशल्या जी। तो तुम्हारे बेटे तो राम जैसे तो है नहीं, और राम जैसे बेटे हो तो राम जी जैसा युग भी तो नहीं है, तो तुम किस मोह में पड़े हो, किसकी बाट देख रहे हो। तत्परता से लग जाओ अपने और ईश्वर के बीच के पर्दे को हटाने में, नासमझी को हटाने, संसार की वासना और चिंता को छोड़ो। संसार सच्चा नहीं है, बदल रहा है। बचपन में सब बचपन का परिस्थिति सच्ची लगती थी, अभी क्या है, नाश। किशोरावस्था का सब नाश हो गया, सब नाश हो रहा है, सब नाश हो रहा है, उसमें शरीर भी एक दिन नाश हो जाएगा। देखत नैन चलो जग जाई, देखते देखते आंखों के सब जगत पसार हो रहा है। कहा मार्गों का छू थीर न रहा है, कौन सी चीज मांगेंगे, कौन सी पकड़ेंगे, जो है वही छूटने वाली है तो क्या पकड़ेंगे। जो पाना है उसको पा ले, जिसको जानना है उसको जान ले, फिर समाज के हित के लिए, दूसरों को ज्ञान प्रकाश करने के लिए करो। जीव जंतु खाने पीने की चिंता नहीं करते, उनका पेट भर जाता है तो तुम्हारा पेट भरने में क्या देर लगती। शरीर मिलाए तो जीव आजीविका तो मिल जाती किसी भी योनि में, तो मनुष्य योनि में क्या भूखे मर जाएंगे। तो दिन में 5 टाइम चिंतन करके शांत चलते फिरते सोचो कि ये मिल गया आखिर क्या, ये पा लिया आखिर क्या, ईश्वर क्या है, जनक को कैसी तरफ थी, पांचाल देश कहां, तो मिथिला बिहार में और कहां पंजाब, वहां से इधर से उधर से सत्संग देने वाले महापुरुषों को आमंत्रित करके सम्मेलन करते थे। तो जनक में त्याग भी था, दान भी था, सत्संग की प्रीति भी थी, गुणग्राह्यता भी थी। याज्ञवल्क्य जी क्या उपदेश सुनते काम हो। नारायण 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 नारायण। जो अपना आत्मा है वो नित्य है, बाकी जो मिलता है बनता है बिगड़ता है। वशिष्ठ महाराज ने राम जी को उपदेश दिया कि एक मूर्ख बालक था, उसने आकाश की रक्षा करने के लिए घड़ा बनाया, वो मिट्टी का घड़ौदा खेलते खेलते फूट गया तो रोने लगा, हाय रे हाय मेरा घड़ा टूट गया। फिर सोचा कि अब घड़ा पक्का करूंगा, तो घड़ा फिर से कुआ के पक्का कर दिया, ठोकर बाकर लगी तो अब भी टूट गया। फिर सोचा अब कुआ खोदूंगा और आकाश की रक्षा करूंगा, तो कुआ भी ढह पड़ा और वो रोता रहा। आकाश क्या है, आकाश आत्मरूप आकाश और शरीर रूपी गढ़ा है। फिर चाहे थोड़ी उम्र वाला कच्चा गढ़ा हो, ज्यादा उम्र वाला पक्का गढ़ा हो, अथवा तो और गहरी उम्र वाला कुआ हो, सब ढह पड़ते हैं। आकाश की इनसे रक्षा नहीं होती, आकाश तो स्वतः रक्षित है, ऐसे आत्मा तो स्वतः अमर है, और मरने वाला तो शरीर मरना ही है, मरने के भय से सब भयभीत है, छूट जाने के भाई से सब भयभीत है। ये करूं वो करूं, ये करूं ऐसा करूं ऐसा करते 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 सदियां बीत गई, लेकिन ऐसी अवस्था है कि जिससे किया जाता है उसमें थोड़ा शांत हो जाए, ज्ञान संयुक्त, और अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, अपने दिव्य सत्संग का प्रचार प्रसार उसी लिए थोड़ा करो तो ठीक, बाकी स्वार्थ के लिए तो कर करके लोग परेशान, कर्म बंधन। कुछ लोग कर्म भीरु होते, कोई कर्म आसक्त होते, कोई कोई विरले है अनासक्त, वो धन्य हो जाते।